أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جون 1978 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 105 سے ہو رہا ہے. 26/105 ذکر آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام. قرآن کریم نے سلسلہ رشد و ہدایت کیا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے کیا ہے. قرآن میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی سب سے پہلے نبی نہیں جن کا ذکر ہے، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ ان سے پہلے بھی اسی قوم میں بھی اور رسول آئے تھے اور اس قوم نے ان کی بھی تکذیب کی تھی. ویسے قرآن کریم نے کہا ہے کہ کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس میں خدا نے اپنے رسولوں کو نہ بھیجا ہو. اس لیے کہ خدا نے جب یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری طرف سے ہدایت آئے گی اور جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ بنی آدم سے کہا تھا، نو انسان سے کہا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ نو انسان سے ایک وعدہ کیا جائے، ذمہ داری دی جائے اور اسے صرف ایک خاص خطہ زمین تک محدود کر دیا جائے. تو قرآن نے کہا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس میں ہم نے آج ہی کو نہ بھیجا ہو. لیکن قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ ان انبیاء میں سے بیشتر تو وہ ہیں کہ جن کا ہم نے تصریحاً ذکر نہیں کیا اور چند وہ ہیں جن کا ہم نے صراحت سے ذکر کیا ہے، اور صراحت سے انہی کا ذکر کیا ہے کہ جن سے زمانہ نزول قرآن میں عرب اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والی قومیں مانوس اور شناسا تھی، یہودی، عیسائی اور خود عرب. یوں کہیے کہ سیمیٹک ریس میں جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کا صراحت سے نام لے کر قرآن نے ذکر کیا ہے، دوسروں کا صراحت سے نہیں کیا. بات صاف تھی، اگر عربوں سے کہا جاتا کہ صاحب کنفیوشس نے اپنی قوم سے یہ کہا تو وہ کہتے پوچھتے کہ وہ کنفیوشس آ گیا، تو اتنا وقت اس میں صرف ہو جاتا اور بات اس کو چھوڑ جاتی. تو قرآن کا مقصد تو کوئی خاص ہسٹری یا تاریخ بیان کرنا نہیں، وہ تو دین بیان کرتا ہے. اور یوں جو دین کی بات آ گئی تو اساسن اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو جب دین کو مذہب بنا دیا تو انبیاء کرام کو بھی وائز بنا دیا گیا. بس وہ آتے تھے اور واضح جاتے تھے لوگوں کے، اور پھر واضح کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو بھائی میں نے کہا ہے خدا کے لیے ایسا کرو. بابا یہ چیز من کے گاتے کے بھی وائز بنا دیا ان کو، اور واضح بھی ان کا زیادہ سے زیادہ ان چیزوں تک محدود رکھا جسے عام طور پر یونیورسل ایتھکس کہا جاتا ہے. ابو الکلام آزاد مرحوم کے الفاظ میں عالمگیر خطاب نے، اور ان کے متعلق اس نے کہا ہے کہ ہر تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں. بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ انہوں نے بتایا جاتا کہ جن لوگوں کی خاطر اس نے یہ مداحنت اختیار کی تھی اس شخص میں، خود ان کے ہاں ان کے دھرم میں یہ جنہیں عالمگیر خطاب میں کہا جاتا ہے، یہ ہے عالمگیر خطاب میں یونیورسل ایتھکس میں کہا جاتا ہے، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، چوری نہ کرو، فریب نہ دو، ہمسائے کو نہ ستاؤ، گنا نہ کرو، انہیں کہا جاتا ہے یونیورسل ایتھکس یا عالمگیر خطاب میں. تو میں انہیں کیا بتاتا ہوں، تو میں نے اس زمانے میں بتایا تھا، جن میں زیادہ بھی بتایا کرتا تھا، جھٹ کے بھی بتایا، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی. خود ہندوؤں کے دھرم کی کتابوں کے اندر ان ایتھکس کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہزار اپنی آنکھیں بھی نہیں نگاڑ لیتی. میں نے کبھی اپنے درس میں یہ جو کمپیریٹو اسٹڈی اور ریلیجن جسے کہتے ہیں، تقابلی مطالعہ مذاہب کا، یہ میں نے باب نہیں باندھا، ضرورت ہی نہیں ہے اب ہمیں ان چیزوں کی. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب جو ہے مذاہب عالم کی مبینہ آسمانی کتابیں، اس میں آپ دیکھ لیں ہندو دھرم کے متعلق، ہندو دھرم کیا باقیوں کے متعلق بھی دیکھیے گا کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا हमारी मर्जी पेशवाइयत ने अंबिया कराम को वायद की पोजीशन दे के खड़ा किया हुआ, ये वायद नहीं थे। ये अगर आते थे कि इंसानी है तो इस्तेमालियों के जो बातल पर मबनी निजाम है जिनमें इंसानियत का इस्तेमाल किया जाता है, वो बादल पर मबनी निजामों को उमड़ कर उनकी जगह हक पर मबनी निजाम को कायम किया जाए, ये बहुत बड़ी इंकलाबी शख्सियत थी। ये जो चीजें आती हैं, कौन ने उनसे कहा कि अगर तुमने ये ना कहा तो हम तुम्हें संहार कर देंगे, कत्ल कर देंगे, बहुत बदल कर देंगे, तो कहिए तो सही कि अगर तुमसे खुद से कहे कि भाई झूठा बोला करो, झूठा भी उसके सामने ये नहीं कहेगा कि अगर तुमने दोबारा बात ये कही तो याद रखो दाम निकाल दूंगा तुम्हारे। तो ये कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिनकी बिना पर ये कुछ किया जाता। वो बात ये थी कि उनको जो मुकदमा निजाम होता था जिंदगी का बादल पर मबनी, जिसमें वो खून आसानी करते थे, उनके इस्तेमाल करके उनको मिटाना होता था, और ये ग्रोह जिनके मकाब उस निजाम से वाबस्ता थे वो आखिर तक मुखालफत करते थे और ये मुकाबला करते थे, और उसके बाद अगर वही हालात मसाद होते थे तो उसी जगह उस निजाम को कायम करते थे, अगर ऐसी सूरत नहीं थी तो किसी ऐसे सरजमीन में चले जाते थे जहाँ इस निजाम के क्याम के लिए हालात साजगार हैं। ये क्या करता हजरात एम्बियर करा बात समी ने की है, अभी समझ नहीं आ रही। तो ये क्या लेकर कुरान ने कहा ये है कि दीन शुरू से आखिर तक एक ही रहा है, उस दीन पर अमल करने के तौर तरीके से वो हालात के मुताबिक बदलते रहते थे, जिन्हें जुजियात कहते हैं और जिन्हें बाद में हटाने के लिए कहा गया ये दीन नहीं। दीन चंद असूलों का नाम है जिंदगी, और वो शुरू से आखिर तक वही रहे, गैर मुतबद्दल और कुरान ने आज के वो महफूज कर दिए, और वो क़यामत तक के लिए अब हमारे लिए दीन है। तो वो अगर के नूह अलैहिस्सलाम या पहला नबी जो खुदा की तरफ से आया, जो दीन उसने दिया था उसूली तौर पर वही दीन क़यामत तक के लिए मुहकम रहेगा, असासी तौर पर वही खुदा का दीन होगा, और अब जो कुरान ये महफूज है ये दीन का मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो दावतें थी उनको आगे इकट्ठा कर दीजिए तो ये पूरे का पूरा दीन खुदावंद भी अपने सामने आ जाता है। बड़ा चर्चा हो रहा है निजाम मुस्तफा और वो क्या है और उसके लिए सब मुकम्मल हो गया था, होना चाहिए इनके जो ये नहीं बता सके कि नमाज का तरीका कौन सा है, हर एक का अपना अपना, वो ये क्या बताएंगे कि कुरान क्या है। पुराने करीम में हजरात अंबिया कराम की जो ये इंतजार आखिरी दावतें हैं उनको, वो हर नबी के जमाने में जो चीज ज्यादा अहम होती थी उसका जिक्र कुरान में किया गया। उन्हें अगर यकजा आप कर दें तो आप देखेंगे पूरे का पूरा मुकम्मल दिन आपके घर में आ जाएगा, और फिर आप उसके बाद ये देखिएगा कि क्या ये चीजें जो अंबिया कराम ने कही थी ये असातिरुल अव्वलीन यानी पुराने जमाने की किस्से कहानियां थी जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, या हमारे दौर में भी जो अहम मसाइल आपके यहाँ आए हुए हैं निजाम इंसानी के मुतल्लिक, ये उनसे मुतल्लिक हजरत नबी अलैहिस्सलाम की बात शुरू हो गया। कुरान में बयान करदा सबक के लिहाज से सबसे पहला नबी, आज दुनिया में अहम तरीन मसाइल दो हैं, एक ये कि कौमियत का मदार क्या है, आखरुल अमर को मदार कायम किया इन्होंने कि जुग्राफियाई हदूद के अंदर या वतन के अंदर बसने वाले तमाम लोग एक कौम होते हैं, इस कौमियत के नजरिए ने दुनिया को जिस कदर जहन्नम बना रखा है उसके शोरों की लपट में खुद मगरब के मुफ्तरीन इस बुरी तरह से आ गए हैं कि वो चीख रहे हैं इससे निकलने के लिए, रास्ता नहीं मिलता, रास्ता तो अंबिया कराम नहीं देना था जिनसे वो इंतजार करते हैं। तो पहला मसला आज भी हमारे दौर का अहम तरीन मसला ये है कि कौमियों का मदार क्या है, और आप देखेंगे कि हजरत अलैहिस्सलाम की पहले नबी की पहली दावत का पहला ऐलान ये है कि कौमियों का मदार क्या है। क्या ये पुराने किस्से हैं, क्या ये उस जमाने की बातें हैं, ये आपके इस दौर के अहम तरीन मसले का हल है। दूसरी प्रॉब्लम इस दौर में हमारे यहाँ ये है तबका की कश्मकश का क्या है, यही करो है ना हम कड़ी नजर। और पहले नजरी के पहले इंकलाबी दावत के अंदर जो ऐलान आ रहा है वो तबका की कश्मकश के खिलाफ और इसका ऐलान बनाया गया है। और जीए कुरान की अजमत सामने आती है, दीन की अहमियत सामने आती है। पहले नदी का कुत्ता जो तारीखी एतबार से आज के साथ 6000 साल पहले का हो, उस जमाने की नदी के किस्से में जो कुरान दो अहम बातें सामने लाया है वो इस दौर के अहम तरीन प्रॉब्लम है और उनका हल कहीं नहीं मिल रहा दावत हजरत नूह में या कुरान के अंदर मिल रहा है। ये है अहमियत इन हजरात अंबिया कराम के किस्सों की, जिसे हम किस्से कहते हैं। और ये है वो अहमियत जिसके पेश नजर पुराने करीम ने इन दास्तानों को अपने दामन में महफूज किया है क़यामत तक के लिए। ये तारीखी किस्से में रिश्ते नहीं है, ये तो दीन की दावत के ऐलानात हैं और उन पर अमल पीड़ा होने के तुर्क शराइत हैं जो कुरान ने बताया। पहली चीज ये थी कि कौन का मदार क्या है, मदार किस बात है। शुरू से आखिर तक आप देखेंगे अकेले इंसानी ने कबायली जिंदगी पहले थी वो भी वसन की ओतना से खानदानी बल्कि और सिंपली भी शक्ल होती है खानदानी, नस्ल के एतबार से खानदान जरा बढ़ता है तो कबायल के एतबार से खानदान और आगे बढ़ता है तो नसली इम्तियाज की रूह से तस्वीर इंसान जो और आगे बढ़े तो वतनियत की रूह से इंसानियत की तस्वीर। अपने इंसानी आज तक यही मेयार में बनता है और हर मेयार को इसमें नाकाफी नहीं नाकाम साबित करके ये देखकर कि उसके इसको ये मसले का हल नहीं होता खुद मुस्तरद करती चली गई और आज इस मकाम पे आकर खड़ी है। और दावत हजरत नबी अलैहि सलाम ने पहले दिन से ऐलान किया कि ये सारे ऐलान ये सारे मेयार गलत है, कौमियत का मेयार नजरिए और आइडियोलॉजी का इश्तेहार है। मिसाल इसकी ऐसी ठोस मिसाल कि जिसको समझने में किसी किस्म के सबको शुरू की गुंजाइश ना हो और ना किसी उसको अपराध का गुनाह लाना पड़े। बाप और बेटे का ताल्लुक नस्ल के एतबार से इससे ज्यादा करीबदार ताल्लुक कौन सा हो सकता, वतन के एतबार से इससे ज्यादा करीबदार ताल्लुक कौन सा हो सकता, जुबान के एतबार से इससे ज्यादा करीबदार ताल्लुक कौन सा हो सकता। जब इस बेटे के मुतल्लिक हज़रत नूह ने कहा कि कम अज कम ये तो मेरे अपनों में से है तो इसी वक्त ये हदायत खुदाबंदी आई कि नूह गलत कहते हो, महर बेटा होना जो है इस चीज के लिए मुस्तलजम नहीं कि वो तुम्हारे अपनों में से हो, तुम्हारे अपनों में से वो है जो तुम्हारे नजरिए में तुम्हारे साथ हम आएंगे, बेटा भी नहीं है, बेटा गैरों में तो है, इसलिए जिस तरह से गैर तबाह और घर होंगे तेरा बेटा भी उसी तरह से होगा, कहा आम की ये इस नजरिए में आइडियोलॉजी में तुमसे हम आंगना होगा। बीवी के मुतालिक तो एक ही बात, दूसरा रिश्ता ये होता है इंसान का चोरी ब्राह्मण का साथ जिसे कहते हैं, तो वह आप इससे इसकी ज्यादा तस्वीर तो आएगी वहां जहां ये बोटे का मामला हमारे सामने आएगा, इस सूरत में वो नहीं आ रहा था दूसरा आ रहा। लेकिन पहली चीज जो कही गई है पहली दावत जो है दीन की उसमें सबसे पहली आवाज जो बुलंद की जाती है वो ये कि कौमियत का मदार बाप और बेटा भी एक कौम के फर्ज नहीं हो सकते अगर वो आइडियोलॉजी और नजरिए में हम आहंग नहीं, मियाँ और बीवी भी एक कौम के फर्ज नहीं हो सकते अगर वो नजरिए में उनका इश्तराक नहीं है। मैंने तबाह नहीं कहा मीनू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल दो लफ्जों मेरा वो है जो मेरे पीछे चलता है, बात खत्म होती है। बेटा अगर नहीं चलता वो भी अपनों में से नहीं है, वो गैर कौम का फर्ज है। इतनी लंबी चौड़ी बात हमारे यहाँ हो रही है साहब कि दो कौमी नजरिया क्या है और फिर चार कौमियत है जहाँ और आपको पता नहीं कितनी और कौमियत मंजू चली आ रही है, क्या कहा जाए किससे कहा जाए। ना कोई सुनने के मूड में, ना कोई गौर करने के सकार में, हम तो इस दौर में पहुंच गए जहाँ शोर और गौगा ही गौगा है अभी वाले का। वरना कुरान सामने रखने वालों के लिए ये कोई इशू ही ऐसा नहीं था कि जो मुतनाजर थी या डिस्कशन पर काबिल होता। तो पहली दावत में पहली बात जो सामने आती है, बाप और बेटा आपस में वो बात आती है, कुरान कहता है तुम दोनों एक काम तो गर्म नहीं हो और दो कमी नजरों क्या होता पहली दावत। और यही दावत सारे अंबिया कराम में आप देखेंगे एक जिस तरफ रिश्ते की तरह चली आएगी। यहाँ बाप ने बेटे से कहा, इब्राहिम ने बेटे में बाप से कहा, हजरत लूत ने बीवी से कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जितने साथी अपने को सबसे कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके और खुद को जो पूछ रही था किस तरह से निखर कर दो हिजब बन गया, हिजबुल्ला हिजबुल का कहा दो हिजब रह गए, दो ही पार्टियां रह गई। आज सवाल हो रहा है जी यदि इस्लाम नहीं चाहे जा रहे हैं, बड़े कम से कहा है हिजे को भी जो दरवेश का भी उठे हैं कहते हैं कि इस्लाम में न मजबूत देते हैं न सियासी पार्टियां। परवेश साहब कह रहे हैं, परवेश साहब ने जब पुराने तरीन की 20 आयतें नजर कर ली उसके बाद भी ये कहते हुए शर्म ना आई कि परवेश साहब कह रहे हैं, खुदा नहीं कह रहा, परवेश को खुदा की आयतें पेश कर रहा है। बड़ी अजीब बात थी, बिला तस्दीक और करूंगा, पुराने कुरीन ने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये कुरैश दिन की मुखालफत से तकदीर के तुम जरा दिलगिरफ्ता होते हो, ये जालिम तुम्हारी तकदीर नहीं करते, ये इरादा को खुदावंदी की तकदीर करते हैं। लोग ने तो आते तो हम की बेटी है, कहा यह जाता है कि साहब अगर पार्टी से असीन आ रही तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे, यानी इंतखाबात की वरद से वो चीज जिसे कुरान शरीफ करता है वो जरूर रखनी चाहिए, क्यों तकदीर भागता नहीं गोश्त नहीं है बकरे का तो पुलाव पकाना जरूरी है, पुलाव नहीं पकेगा अगर तहरीर का गोश्त डाल दिया जाए क्योंकि गोश्त के बगैर पुलाव पक नहीं सकता, पकाना जरूरी। पहली बात तो रूही ये है कि बाप और बेटा एक काम के फर्ज नहीं हो सकते अगर उनमें इश्तराक नजरिए का नहीं। तो मैंने कहा इसकी ज्यादा तफसील तो मैं वहां बयान करूंगा जहां ये बात आएगी, जिन्हें मैंने हमारे सामने जो आयात इस वक्त है इसने दूसरी प्रॉब्लम सामने लाई है, सब शास्त्री तक न कर और जो इस वक्त सारी दुनिया के लिए वजह सुहाने रू बन रही है, सब शास्त्री तक न कर, हल नहीं मिल रहा, पेशों के एतबार से, काम के एतबार से, आमदनी के एतबार से इंसानों की तकसीम। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत में आप देखिए ये दो चीजें पेश की गई है, किसका नाम दीन है, ये मुझे नमाज रोजे हज ज़कात से इंकार नहीं है इन, लेकिन जब इनको आप अरकान इस्लाम कहते हैं रुकन के नाम होता है सुकून पिलर, ठीक है पिलर तो लो, पिलर के ऊपर से छत डाल दी चाहिए ना, जब इमारत बनेगी ना छत रात कोई नहीं पिलर, ये दीन की इमारत या छत के लिए पिलर थे, पिलर खड़े हैं जैसे बुनान और रूमा के वो पुराने खंडरात में आपने देखा होगा ना, वो मेरा आपने पिलर वो मरूर जमाना के वो इमारतें और वो छठी टुकड़े पर आ चुकी हुई है, आज हम खड़े हैं और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उनके ऊपर लाखों से असर करती है तो वो महसूस रहे हैं किसी तरह से, यही है मतलब हमारी जरूरत आलू की जाए छत पानी हो या ना, ये छत है ये छत को संभालने के सुकून थे, ये बात बताता है दीन के तब आपसी कश्मकश का हाल क्या है। और नजर ये आता है कि ये मसला आज का मसला नहीं है, वो तो कुरान ने जो कहा है ना कि आदम के बाद ही इंग्लिश के ऊपर आ गया उसके माने नहीं है, कि इंसान का मसला जो है जिस वक्त आपने समझनी जिंदगी उसने अख्तियार की वो जो इंग्लिशियत है वो साथ ही आ गई, इंग्लिशियत थी जिसने ये कश्मकश पैदा की, तबकाजी कश्मकश, कौमियत की कश्मकश, इंग्लिश का काम ही नहीं है खाजा इस तरह, इसीलिए एक बार ने इसको कहा अच्छा लफ्ज़ है कज़्ज़बत कौम नूह मुरसलीन, नूह माफ़ी कज़्ज़बत कौम नूह मुरसलीन, उनकी काम में भी खुदा के रसूलों की तकलीफ थी। अब यहाँ देखिए मैंने कहा था कि ये पहले नबी रसूल नहीं है, कहा है तो कौम नूह ने भी खुदा के रसूलों की तकलीम की, और यहाँ तो वो कौम नूह घर को जाती है जो उसके पहले नबी आते रहे हजरत इब्राहिम हजरत नूह से शुरू होता है। इज़ क़ाला लहुम अखूहुम नूह अला तत्तकून, कौम में जो रसूल आ रहा है वो कोई गैर नहीं है, बाहर से नहीं आ रहा है, वो नासिर मुश्किल है, एक लफ्ज है उनका भाई उन्होंने किया है, दुश्मन नहीं किया, उन्हीं में से भाई बंधुओं में से एक रसूल आया और सारे रसूल उन्हीं में से हुआ करते, उनमें जिंदगी को गुजारते थे अपनी और अपनी जिंदगी को अपने दावा है नबूवत की सदाकत की शहादत के तौर पर पेश करते। कुरान ने कहा उनके भाई बंधुओं में से आया, बात उसने यही कही कि आला कर सकूं, क्या तुम जिंदगी की खतरनाक घाटियों से बचना चाहते हो या नहीं। हमारे अंदर में हुआ कि क्या तुम मुतकी बनना चाहते हो या नहीं, और मुतकी की भी डेफिनेशन या जो तसव्वुर है आपके जेहन में, क्या तुम जिंदगी की खतरनाक घाटियों से बचना चाहते हो या नहीं, इन खारदार घाटियों से अपना दामन बचा के जाना चाहते हो या उलझना चाहते हो इनके अंदर। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं एक तो ये खुद नहीं कह रहा पैगाम बर हूँ, किसी और का कासिद हूँ, पैगाम देने आया हूँ, पैगाम है अमीन, खुद मैं उस पैगाम में अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा कि वो अमानत है मेरी का, और उस पैगाम का नतीजा ये है तुम्हें अमन नसीब हो जाए। सबसे बड़ी चीज जो दुनिया के अंदर है अजीब अनुमान अमन नसीब हो जाए, हर रसूल अपने आप को अमीन कहता, बड़ी अजीब चीज है, आगे मैं जब आऊंगा बताऊंगा शायद, ये अलग मीन नून जो है अमन, ईमान तो यही से है, मोमिन तो वो है जो तमाम नौ इंसानी के अमन का जिम्मेदार है। आपको पता है कि कुरान ने अपनी एक सिफत अल मोमिन बताई, अगर अल मोमिन मोमिन के माने सिर्फ मुसलमान हो या ईमान लाने वाला तो खुदा के भी कदर को ये नहीं कहा जा सकता ना कि वो ईमान लाया है, मोमिन के माने है अमन का जिम्मेदार, अमन आजम का जिम्मेदार। जिनकी अपनी का जिये जिये हो कि एक सानिया के लिए भी अमन नसीब ना हो उन्हें मोमिन कहने का तो हक है दुनिया के अंदर, अपने अमन के लिए दूसरों के कहां दस्त लीडर हो जाके मोमिन कहला सकते हैं अजीत अनुमान, ये तो मकान आदमी ये तुमको भी नहीं आए पुराने को आदम से जो कहा था कि मैं भेजूंगा हमारी तरफ से हदायत आएगी, समान कर या हदायत बड़ा खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ और जुम्मन नहीं होगा जो इसका इंतजार करेगा। बारह रसूल अमीन कहा गया फत्ता पुल्ला कवानी में खुदाबंदी की निगेदार करे कहने ये आया निगेदार एक लफ्ज है जीना ने बंद जिसने आकर मजहब और दीन में फर्क जो है निखार कर बयान कर। मैंने कहा हुआ है ना कि कुरान के किसी लफ्ज से भी ऐसा ना गुजर जाइए, इन्हीं अल्फाज के अंदर सारे दीन के बड़े बड़े आसमान जो है जू सुबह हुए हैं जैसे आम के दिल में पहाड़ सुन हो जाता है। फत्ता पुल्डा कवानी में खुदावली देने के बाद हर अहल मजहब ये कहता है अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की परस्तिश करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के हुक्म मानो, अपनी अपनी जगह वो यहाँ बैठा कर रहा है वो वहां बैठा कर रहा है। दीन क्या एक भैंस तो इतना ही है जिसमें सारे मुल्के किसी एक ही इबादत करते हैं, एक निदान, वरना मजहब के एतबार से करता खुल्ला हर एक मुस्तकी अपने अपनी जगह मुस्तकी होता है, जिसे हम मुस्तकी कहते हैं इबादत गुजार कहते हैं, उसको इज्तिमाई मिसाल को नहीं रास्ता कुछ होता। कहा फत्ता पुल्ला व अतीउन अपने अपने तौर पे नहीं, मैं इस निजाम का मरकज हूँ बाकी किसके के खुदा के आसाम ले के आया हूँ, मेरी अतायत करोगे तो तब तत्वाचार बन सको। तो जब तक अजीना है मन उम्मत के अंदर वो ना हो जो उसका मरकज बने और आपको याद है कि ये मर्तव्य मिल्लत या मर्तव्य सुन्नत की इस्तिलाह मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? मर्तव्य निर्णय याद आ गया मेरे खिलाफ तो वो कुछ झंडे चले आ रहे हैं, खासतौर से इस्तेमाल के सामने ये भी इस्तिलाह है मर्तव्य मिल्लत की शोर मचा हुआ तो साहब ये देखिए इसमें मरहूम गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल जैसे को मरकज मिल्लत करार दे के कहा कि उसकी अटार से भी उत्तरा रसूल की अटायत है माजल्ला माजल्ला किसी को कह दीजिए उस किस्म के बातों को फादर की अटायत में उत्तरा रसूल की अटायत कहता है उसे मरकज मिल्लत बताता है आपके उसका तो स्कूल खा जाएगा। कोई उनसे ये पूछता नहीं है कि सन 38 से आज तक तुम लोग ज्ञान मौजूद परवेशान की किताबों के हजारों लाखों सफात मौजूद किसी एक ने एक फिक्र ऐसा बता दीजिए कि जिसमें उसने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को मरकज मोहम्मद कहा है। झूठ है जो बोला कर तो कौन वेरीफाई कर रहा है? कौन है कि वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं समझती आगे बताते चले जा रहे। ये है अकीम उन्हें दीन एक निजाम का नाम है, निजाम में एक अथॉरिटी होती है, दीन की सेंट्रल अथॉरिटी जो है मैंने उसका तर्जुमा मर्कज़ी मिल्लत किया। तर्जुमा ये हो सकता सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैं कहता तो तवज्जो किस गवर्नमेंट की तरफ चल जाती। आपके यहाँ खिलाफत रास्ता देखो उसने आकाम सादर करने वाली मर्कज़ी अथॉरिटी दीनों को जिसे आप खलीफा कहते हैं अमीर मोमिनीन कहते हैं मैंने उसके लिए खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तो ये वर्ष भी हमारे यहाँ सवाल हो चुका हुआ गलत मानी थी। अमीर उलमोमिनीन भी नहीं कहा कि इस तरह के भी मखसूस माने हो चुके हैं। मैं इस दौर में इस किस्म की बात नहीं छोड़ना चाहता। मैंने सेंट्रल अथॉरिटी का तर्जुमा मर्कज़ मिल्लत कर दिया, बड़ा इनको सेंट कर दिया लेकिन जिन्होंने गालियां देनी हो वो तो हर बात के ऊपर जानती है। अची उन्हों के माने ये है ये क्यों कहा कि इफ्तिखार खुदा का जो है तकवा खुदा का जो है उसी सूरत में हासिल हो सकता है कि मेरी अदायत है वो अदायत किसी फर्द की अदायत नहीं किसी डिक्टेटर की अदायत नहीं थी। साधा नील अकुल रसूल नील खुदा के आकाम लाने वाले की अदायत थी। उसकी अदायत क्या माने उसकी आकाम की अदायत आकाम तो खुदा के तो आकाम है खुदाबंदी की अदायत एक निजाम के थ्रू जिसका मरकज जो है आपके यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी हाँ वो एक सरदार करार दे दें या एक निजाम करार दे दें एक कैबिनेट करार दे दें एक हुकूमत करार दे दें वो आपकी जवाब दूध को कुरान ने उसके लिए कोई ऐप में प्रयोग नहीं की। अमरोहन पूरा बहना उनसे कहा है कि इनके मामला बाहरी मुशावरत से तय होंगे तो मुशावरत के बाद जिस किस्म का भी निजाम आप काम करें उसकी बुनियाद ये होगी कि खुदा के आकाम आकामात की अकायद कराने वाली धरे ये है इस्लामी निजाम और ये है जो हर रसूल ने कहा खुदा के आकाम की बर्दाश्त करो मेरी अकायद करके अपने अपने तौर पर नहीं अपने अपने तौर पर करोगे तो मदद हो जाएगा। एक सेंट्रल अथॉरिटी उसमें दरमियान में मुकर्र करोगे तो दीन हो जाएगा निजाम हो जाएगा। ये है फर्क इस्लाम में और मगर अकीमों में अपनी अदायत नहीं करा रहे आसाम खुदाबंदी की अदायत कर रहे क्योंकि रसूल कह रहे हैं अपने आप से कश्मीरी इस्लाम का सियासी निजाम क्या है वो दोनों लफ्जों में तो इस्लाम कह जाती है और अगली थी हर रसूल ने देखा من یہ ہے بنیاد ایمان جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں خدا کے آسان کی عقائد کا کہہ رہا ہوں اور یوں کہہ رہا ہوں کہ وہ میری عقائد کے ذریعے سے ہوگا تو اس میں ضرور بات ہوگی کہ اپنی عقائد چاہتا ہے صاحب جی ہاں اس میں گریز کے مفاد کا بستا ہے اسی سانس میں کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اگر نہیں مانتا یہ بڑی چیز کوئی اجر نہیں سمجھتی یہ شخص وہی شخص ہی قوانین کے اوپر چل سکتا اور چلا سکتا ہے جو جنہیں وہ چلاتا ہے ان سے کوئی بدلہ سلا معاوضہ نہ تھا جنا بھی ان سے اب یہاں سے تصور کا مطلب سامنے آ کر بات ہے پرانی تصور ہے کر کے دنیا کر کے الائے کر کے الائے کر کے ترک کر کے اس وقت ترک کر انتہا ہے ان کے ہاں کی وگرنا ہم خدا سے گھر جلے بے مدعا کر جلے بے مدعا انتہا ہے ان کے ہاں اور یہ ناممکنات میں سے دل ہو اور اس کا مدعا کرنا ماد تخلیق کے مقاصد زندہ ہے یہ جو مدعا ہیں آرزوئیں ہیں کہتا ہے وہ نہیں پہلے ان کی تخلیق کا نام زندگی ہے جو بے مدعا جو ہے مردے کا ہو پتھر کا ہو زندگی کا ہے نہیں ہوتی اگر آپ کے سامنے کوئی مدعا کوئی آرزو کی تمنا رہی نہیں تو یہ زندگی نہیں ہے موت ہے ان کو انتہا کی تصور کی اب یہاں یہ جو کہہ دیا کہ میں تم سے کچھ اگر نہیں چاہتا تو آئے تصور والے اس دے کر چلے ملتا جی قرآن ہے اسی لمحے میں اسی سانس نے کہا یہ نہ سمجھ لو کہ میں کوئی اگر نہیں چاہتا میں ماں اصل اور تم والے ہو نظر تم سے کوئی اگر نہیں چاہتا ان اجمیا رب العالمین ضرور اگر چاہتا ہوں تم سے نہیں اس سے چاہتا ہوں اور وہ کون ہے میرا ہی نسل نما دینے والا بھی تمام نو انسانی کا پالنے والا جو ہے اس سے اپنے پالنے کا اگر چاہتا ہوں واہ واہ سب کی گھر زندگی با مقصد بتا دوں یہ کہا ہی تو غلط ہے یہ بات کہ آپ کوئی کام کریں اس کا اجر نہ آپ چاہتے قانون مقاصد عمل تو کسی چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کے ہر عمل کا خیال تک کا بھی اگر ہے غلط ہے تو غلط اگر ہے صحیح ہے تو صحیح اگر ہے فرق یہ ہے کہ ان انسانوں سے وہ پچھڑا نہیں مانتا اپنی خدمت اور بے سلا بھی نہیں کام کر رہا کہ یہ ناممکن ہے انسان کے لیے سائیکولوجیکل امپاسبلٹی ہے عزیزا نے مان اگر مانتا ہوں سلا چاہتا ہوں تم سے نہیں جاتا اس کو چاہتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے انسان کے لیے کیا بات ہے اور اگر آپ کے ہاں کے نظام کے خادم کارندے کارکن امپلائیز ان کی صورت یہ ہو جائے کہ کام آپ کیا کریں اور اس کا اگر اپنے ڈپارٹمنٹ سے جا کے لائیں نظام سے ہی ہو جاتا ہے یہ بگڑا ہوا نظام ہو ہے کہ وہ کام جس کے لیے انہوں نے اگر وہاں سے دینا ہے وہ آپ سے اگر مانگتے ہیں کہہ دیا جتنا کہ تھی انہوں نہ جا کے چولہا بڑا تھا کافی کر چولہا نہیں چوکتا اسے وہاں سے تنخواہ ملنی نہیں ہے لیکن وہ تم سے بھی اگر چاہتا ہے اور اسے اوپر بد لے جائیں اگر بات یہ ہو کہ جو کام میرے ذمے ہیں میں نے تو وہ کرنا ہے اس کا اگر میں نے ان سے دینا ہے جن نے یہ کام میرے ذمے لگایا نظام سے ہی اور اگر صورت یہ ہے کہ جن کا وہ کام کرنے آیا ہے ڈاکٹر کھڑا ہے گورنمنٹ کے اسپتال کے اندر مریض آ رہا ہے اگر وہ مریض سے اگر مانگ رہا ہے باطل کا نظام ہے وہاں سے اپنا حضر دے جن کا اپنا کام کرے دیکھ لیجیے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تمہارا ماں اصل حکم علیہ من اجر ان اجر الا رب العالمین رب العالمین کہہ کے کتنی بڑی بات پیدا کر دیتا فتق اللہ وحاتی ہوں پھر دہرایا پھر کوئی بات میں کہتا ان سے کچھ نہیں مانگتا میں خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو اس کا عملی طریق یہ ہے کہ ایک نظام بناؤ ایک ہے تو اجتماعی بناؤ اس کی سینٹرل اتھارٹی ٹو بگن بھی شروع میں اقتدار وہ میں ہوں گا کیونکہ میں خدا کے احکام لے کے آ رہا ہوں اور احکام ایک ہی وقت میں سارے نہیں مل گئے یہ آتے رہیں گے جن جن حالات کا تقاضا ہوگا اس لیے میری ہدایت ضروری ہو جائے گی جب یہ احکام اکٹھے ہو جائیں گے میں چلا جاؤں گا اس کے بعد جو بھی آپ کو ان عطائے ان احکام کی عدایت کرائے گا پھر وہ اس کی عدایت دے گا یہ ہے خلافت علام حاضر مجھے کی بات کرتی جی بات ابھی یہاں نہیں صاف ہوئی کہ انہوں نے کیا کہا تھا ان سے تو کہا ہوگا نا کہ یہ ہیں وہ احکام خداوندی جن کی عدایت میں کہتا ہوں قالوا انومن لکا یہ جو ہے لکا نام کی بات ईमान लाना नहीं बल्कि बात मानना उसके मान होते हैं और दान के साथ ईमान आता है। आमतौर पर दो के साथ ये अर्ज जाने वाले जानते हैं ये हरी से जा रही है बड़ा फर्क पैदा कर रहे हम तुम्हारी बात मान लें भाई क्या एतराज है जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें कोई एतराज करो मैं जवाब दूंगा। बात तो बड़ी महसूल है तुम्हारी वो काबिल एतराज नहीं है। आपको मालूम है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए थे उनसे जाके कहा था कि मैं पैगाम पर आया हूँ खुदा का तो ये बात है वो मान लो उसने कहा था कि क्या हम ऐसी कौन के फर्द की बात मान लें जो हमारी मासूम है। मासूम कौन और गुलाम कौन के फर्द की बात इस पाबंद नहीं होती कि कोई उसको बर्फ नहीं ना समझे। उसने इस बात पे एतराज नहीं किया था अगर तो मूसा अलैहिस्सलाम की तो तुम जो कहते हो क्यों गलत है इस पर मुझे एतराज है। कहा यह था कि कहने वाला वो शख्स है जो हमारी मासूम और गुलाम कौन का फर्द है गुलाम कौन के फर्द की बात इस काबिल हो सकते कि हाजम कौन जो है उसकी बात भी सुन सके। आज भी अजीबान मन वो फिरौन और बनी इसराइल के नाम तो नहीं रहे फिरौन और बनी इसराइल के मौजूद रहे ये जरूरी नहीं कि तुम गैर कौमी मासूम हो अपनी कौमी को अपनों की मासूम हुआ करती है तो हाकमिया ये नीचे वाले जो है उनकी बात ये समझते नहीं कि ये इस कारण है कि इनकी बात सुनी जाए। ये अगर इनको कुछ कहना होगा तो पिटीशन देनी होगी इनके पास अप्लाई करना होगा बर्खास्त देनी होगी इनको गुजारिश करना होगा उनकी खिदमत अकबर और फिर जिस तरह से वहां से विद्वान पढ़ती है जिस तरह पत्रकार में पढ़ते हैं जिस तरह से बिहेव वहां होता है बिल्कुल ऐसा मुस्लिम का खाने नहीं होता। वही चीज अब जहां से बात उन्होंने कही क्योंकि ये तो उसी कौम में से थे मासूम कौम के गर्व नहीं थे एतराज क्या है। आप एक बात जो मैंने शुरू की थी तब खाती हूँ तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो तो वो है जो हमारे यहाँ के कमीने कमीन है सब नाथ होती है कमीन है कमीन वो कमीन क्या होता है हमारे यहाँ गाँव में इनको कमी कहते हैं वो कमी क्या काम करने वाला कमी काम करने वाला काम करने वाला कमी और वाकई गाँव की जिंदगी के अंदर धोबी नाई जुड़ा कुम्हार मुर्की और आप हैरान होंगे उनमें इमाम मस्जिद भी शामिल होते रिवाज के तौर पर नहीं गवर्नमेंट के कागजों में लिखा हुआ होता है। ये जो मर्दी शुमारी होती थी ना हमारे यहाँ उसके यहाँ जो खाने बने हुए होते थे उसमें जो कमियों का कमीनों का खाना होता था ना कमी कहते थे उनसे उनमें जो सारे लिखे होते थे उनमें इमाम मस्जिद भी होता। तो ये जो है कमी काम करने वाले अब तब काफी कसम कसम आज भी आप देख लीजिए ये जितने पेशावर लोग हैं उनके मुकाबले में एक दो हैं जो काम कुछ नहीं करते और ऐड करते हैं यानी वो तो काम के दुकान पर ही इशराफ हो गए और ये जो काम करके अपनी रोटी कमा रहा है ये कमी हो। और बात आज की नहीं बात तो जो पहली दास्तान शुरू हो रही है उसका पहला लफ्ज ये है कि यू जब तुम बात कह रहे हो तो मुझको एतराज नहीं कर रहे एतराज ये है कि ये जो कौन से हमारे यहाँ पर कमी थे कमीन थे पेशावर थे इनको तुमने मुसलमान का दर्जा देकर अपने साथ बैठा लिए तो तुम्हारी बात मानने के बाद हम इनके साथ बैठे और साथ बैठना जो मुहावरा नहीं है गाँव में जाके देखी हाँ वो गांव के बाहर तकिए में बढ़ के दरख्त के नीचे क्यों ना बैठा हो चौल भी तो बैठा होगा पलंग के नीचे फिर चौल जो चीज रात के जो लोग होंगे वो कहा गरीब भी हैं वो तो बैठ सकते हैं दूसरे पलंग के लेकिन जो उसकी रात को गरा नीचे का हुआ उसकी जरूरत नहीं हो सकती कि वो किसी मस्जिद पे बैठ सके उसे नीचे बैठना बैठ ही नहीं सकता बराबर एतराज ये था। और यहाँ भी अजीजान मन जब आप एक बर्खास्त लेके हाजिर होते हैं अक्सर मवाद की अदालत अदालत में नहीं दफ्तर में उनके कुर्सी खाली पड़ी हुई, आपकी जरूरत नहीं होती कि आपको दो कुर्सी लगाए, और वो भी आपकी तरफ देखते ही फिर फैसला करता है कि उसको दोबारा करनी कुर्सी को बैठने को जाना चाहिए, बराबर में बैठ जाना। जो सब पेपर बाहर जहाँ नहीं ना है यही कदर से बन रहे, वही फिक्र के असदुल्ल ही, वही बरहदी, वही अंदर ही, वही नूर, वही उसकी पाऊ तबा कल अर्ज नूर। तो ये तुम्हारे हैं अर्ज पेशा कर दो, कमी लो, काम करके तुम्हारी करने वाले जमीन हमारे तबके से। अब देखिए मेयार क्या है यहाँ, जिल्लत से खराब, काम करके खाने वाले जमीन पाऊंगे, दूसरों की कमाई के इस्तेमाल करके अपने महल की रंगीनियों का सामान तो हम पहुंचाने वाले शरीफ करी जरूरत। पहले दिन से कभी अगर नहीं होगा कुत्ता ग्रहण हो रहा, क्या यही नहीं कि अरे फिर ये तो अपनी दास्तान मालूम होती, क्या आज की बात नहीं है? दूसरी जगह ये है कि उन्होंने ये भी कहा था कि ये अर्जल हैं, इन्होंने तुम्हारी बात से लद्दाख कह दिया, ईमान ले आए, मान लिया, ये कोई सनद हो सकती है इस बात की तो वाकई तुम्हारी बात नाकूल है, मानने के लायल है वहाँ है तो ये अर्जल है। बाद राय 11/27 मुंशी राय थे सोची अपना फिक्र के लोग ये कह देना के साथ देखिए इन लोगों ने भी तो गौरव फिक्र के बाद बात को सही माना है, तुम भी मानो तो नगर ये कोई सनद है। यानी गरीब आदमी जो है अपना फिक्र से तो आ रही हो, फिर मैं वही पंजाबी का मुहावरा लाऊंगा, दीदी कोठी के दाने और एक कमले की सियाना, जिसके घर खाने को हो उसका जो कागज है वो भी दानिशमंद कहलाता है, और गरीब कितनी ही अपना दानिश का क्यों ना मालिक हो कोई उसकी बात नहीं सुनती, भरी माफल के अंदर कोई गरीब खड़ा होकर ये कह के यानी वो इस काबिल नहीं कि बात सुनी भी जाए उसकी, वो ही बात बाद इनकी राय। हाँ सर, इनकी राय क्यों है, क्या राय है? राय तो चांदी या सोने से खरीदी जाती है, बाजार में बिकती है, इसलिए उनके घर में तो वो भरी पड़ी है, उनकी कोठियां भरी पड़ी, आला राय से तो गरीब की राय क्या, दोनों बातें क्या तो माशरे में इनका मकाम क्या अर्ज है, उनकी राय इस काबिल नहीं कि उसके गौर भी किया जाए। क्यों जिन्होंने मन कब की बात हो रही है, आज की हो रही है, 2000 साल पहले की हो रही है। आप देख रहे हैं दीन किस तरह से अबलियत दरकिनार होता है, क्या ये काम है नूह से कहा जा रहा है या आज की काम से कहा जा रहा है? जवाब मिलता है क्या बात, बिना कानून जा मालूम, कहा कि मुझे इससे वास्ता नहीं है कि ये लोग क्या क्या काम करके अपनी रोटी कमाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हक पर मबनी निजाम है उसकी सदाकतों के फायदे, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मेरा वास्ता नहीं। ये जो है कि अपने काम काज में भी ये रास्ते निकलते हैं या कुछ उसके अंदर गलती करते हैं, इन हिसाब हो इनका अला रबी लाउन, अगर तुम मतलब तुम्हें से काम लो तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ एक मेयार है जो मैंने कायम किया है, सवाबतों का इतराब करने वाला वो हमने है, गरीब हो अमीर हो, काम काज करने वाला हो काम काज के अंदर हो, क्या कुछ अपने अंदाज से करता है इसका हिसाब खुदा के कानून में मकाफा के अंदर नहीं, बड़ा शुरू से अकल से काम दो जो तुम करते, वहां से जवाब मिलता है क्या नहीं, इनको निकाल दो अपने यहां से हम तुम्हारे साथ हो जाए। फिर देखा कि उनको इनकी दावत पर इनकी दावत पर एतराज नहीं, एक राय ये है कि ये जमीन हमारे यहाँ के और हम दोनों इकट्ठे एक सतह पर बैठते हैं यहाँ पर तुम्हारे पास, ये नहीं हम मानते, ये है तुम्हारी शर्त, अगर ये शर्त है तुम्हारी तो सुन लो, वाना बेतार दिल मुमिनीन, जो इन सदाकतों को सही जिसने समझ लिया है ईमान लिया है तुम्हारी खातर मैं जिन्हें मर्दूत कर निकाल नहीं सकता, इन्हें धुतकार नहीं सकता, इन्हें अलग नहीं कर सकता। तुम आए हो, बड़ा मान है तुम्हें अपनी दौलत पर, मान है तुम्हें अपने बहुत ज्यादा शराफ होने के ऊपर, मान है तुम्हें अपनी जागीरदारी समझदारी के ऊपर, अपने घर मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मैंने पहले ऐलान किया है कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता इसका। तुम्हारा दुबैल तो वो हो जो तुम्हारा मोहताज हो, तुम उनसे कोई अजर चाहता हो, सुना चाहता। आपने देखा कितनी बड़ी आजादी हासिल हो गई कहने से, तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। ये बात वही कह सकता है जीवन मान के, जाओ मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, अगर तुम नहीं मानते तो तबाह हो जाओगे। ये वो कह सकता है जो पहले ये कहे कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मानता। ये है आजादी। जो जोर नहीं होता उसका जोर दूसरे जगह होता है, दूसरे मकान पे जो उनके यहाँ की बात उनके जवाब तस्वीर से भी जी है। यहाँ बात ये कह के आगे बढ़ गया कुरान के काला रद्द काम नहीं कर सकती। मैं लाश इनसे कहता हूँ, ये कह चले जा रहे हैं कि नहीं तुम जीते। मैं किस बात की तकलीफ कर रहे हैं, यानी कौन सी बात थी जिसकी तकलीफ कर रहे हैं? ये कह रहे थे कि सही निजाम जिंदगी जिसमें इंसानियत खतरात से महफूज रह सकती है, वो मसावात इंसानियत तकरीब इंसानियत का मेयार, मेयार क्या कैरेक्टर किरदार, ये है दौलतमंद नहीं, जात बरादरी का ऊंचा नहीं, सैयद प्रधान होना नहीं, सिर्फ ये कि किरदार और कैरेक्टर कैसा है, ये कह रहे थे ना। वो इसकी तकजीब कर रहे थे। क्या माने तकजीब के माने ये नहीं होता जिस किसी को कहना तुम झूठ बोलते, बल्कि उसको झूठा साबित करना। ये नहीं आना चाहते इसके ऊपर, ये नहीं बैठना चाहते उनके बराबर के जो दौलत में इनसे कम है, इनके एतबार से जात बरादरी तो जोर छोटी है। यानी वो तो मैंने कहा ना कि हम तो सारे के सारे बेशतर हमने से इन हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, जिनका धर्म की बुनियाद ही तफरीक इंसानियत की चार वर्णों के अंदर उन्होंने तकसीम कर रखा उनका ने पैदाइश के एतबार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब शूद्र उस मकाम पे या वैश्य उस मकाम पे समझ लीजिए जहाँ जिस मकाम पे हजरत नबी अलैहि सलाम का ये किस्सा चला आ रहा है, काफी काम करने वाले कैसा ना, इस दर्जे वो तकलीफ है कि शूद्र उस सड़क पे नहीं चल सकता जिस सड़क पे ब्राह्मण चलता है, उस कुएं से पानी नहीं पी सकता जो उन्होंने अपने लिए निष्कर्ष कर रखा है। उनके बकौल खुदा की रूहानी किताब जो वेद है उसका श्लोक को अगर किसी शूद्र के सामने रास्ता चलते हुए कर जाए तो उनके हाथ से शास्त्र के मुताबिक शीशा जलाकर उसके कान में डाल दिया जाता है। तकनीक और इंसानियत की तो हम जो मुसलमान हुए तो मैंने कहा है शायद आपसे बताया था हम भी ना मुसलमान से है तो थोड़ी पूछते हुए थी वो मुसलमान हुए थे हमारे यहाँ जो दादा नाना अभी हुई थे तो वाकई उनकी ये जरूरत थी तो वो ठीक आती थी तो कहते ठीक ज्ञानंदी की ज्ञानंदी की वो बात क्या थी उसको से जो वो ठीक के साथ ज्ञानंदी की कहना चला आ रहा था वो चला आ रहा मुसलमान हो गए तो वो मुसलमान बस वो जिन्होंने आगे किसी मकसद के लिए कर दिया मुसलमान हो गए और आपको ये कहने की बात है हमारे माना मेरे अपने माना मुसलमान हो गए राजदूत के लिए आए के लिए चार दिन में आप हैरान होंगे मेरी एक नानी हिंदी तो ये फादर तो वो सारी जितनी अफवाहें मजबूत रसूबात सारे वही वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और जाकर दूर हमारे यहाँ मौजूद जाकर देखिए सारी जिंदगी में कुछ कमी आगे दिया है अब भी अगर से कमी ये दातों हाथों की आई है दौलत का मियार जो है उनसे भी ज्यादा सख्त हो गया हमारे लेकिन वहां जाके देखिए एक तो जात होती है पहले राजदूत वो बहुत बड़ी बात हुई अभी कह रहे राजदूत चल दो दाता जो अभी आप गोता है अच्छा जी कभी घटी होती नहीं यार घटी में बुद्धू तो मेरा अगर बुद्धू तो मान लिया मैंने ना ये मान लिया जब बती मनुष्य शादी नहीं करेगा तो जरा हीरी में गोद है यानी जात का ठीक है भी है राजदूत उसके नीचे सब कास्ट जिसे आ जाती और वो कितनी होती है नीचे तक कितनी बड़ी तकलीफ जो है, यानी राजपूत और हराई वहां से किए जाए तो उनका तो सवाल ही नहीं कि एक दूसरे के साथ मिल बैठी है। खुद एक रात के अंदर बोते नहीं होती है कंधा चलिए। अगर ये बनाने के तकाजों ने उनको किसी तरह से कुछ तादाद किया है और पार्टीशन को एक बात जो भी हुई है कि आबादी ऐसी घुल मिल गई आकर तो वो इतना ज्यादा मुतशद नहीं रहेगी, तो उसके बाद ये दौलत की तकसीम ने हमारे यहाँ क्यामत बर्पा कर दी। मजदूर और कारखाने का मालिक तो सदगुर में भी आ सकता है कि इनके मसाला है, पर क्या है ये काम करके रोटी कमाता है, वो इसकी मेहनत का चलता है, तो उसे जमीन होना चाहिए कमर से, वो जो दूसरों की मेहनत के चलता है उसे जमीन होना चाहिए, नहीं वो वाली इज्जत है ये उसकी निगाह हमें जमीन। इस दौर में हमारे यहाँ इस मतदान बढ़िया हमने का किया था तब भारतीय कश्मीर में बुरी चीज आई कम्युनिज्म आया, कार्ल मार्क्स ने ये ऐलान किया बहुत बड़ा ऐलान था, तब खासी कश्मकश के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान था, शुरू में हजरत अल्लामा ने लिखा और मैंने तो उसके ऊपर कुछ फैसलों से बात की थी। तो इसका हल तुम देख सकते, तुम्हारे पास इसकी बुनियाद नहीं है, अहसास नहीं है। हाल उनके यहाँ आपको मालूम है, वक्त थोड़ा है बात लंबी हो गई, सोशलिज्म ले आया ना, कम्युनिज्म को तो आ नहीं सकते। आपको मालूम है कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म दी थी, कम्युनिज्म का ये नजरिया था ना कि हर एक को उसकी इस्तेदाद के मुताबिक काम, उसकी जरूरत के मुताबिक उसकी जरूरत, ये बहुत बड़ा असूल इंसानियत का हाल उसी ने, लेकिन उसने उसके साथ ही ये कहा कि असूल तो यही है जो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस पर अमल किस तरह से किया जा सकेगा ये मैं नहीं बता सकता, मुझे काबिल अमल नजर नहीं आता, होना है आखिर में उसने ये कहा है, ये डिस्कशन मौजूद है मुझे। तो आखिर में अमर इंसानियत में आना है, उसके कैसे आए भी मैं अभी नहीं बता सकता, मेरे जहन में ये बात नहीं आ रही। आपको शायद याद नहीं हिस्ट्री उनकी पड़ी है, उसकी पार्टी के बहुत से लोग उसका साथ छोड़ गए, असूल इतना बड़ा बताते हैं इंसानियत की फलाह बहबूद पर, ये नहीं बताते कि अमल कैसे इसके ऊपर होगा, क्योंकि वो रोगियन है ख्याली पड़ाव बता रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सब साहब किरदार बजाय हमारे यहाँ का जो लीडर होता है वो कहता मैं पढ़ के बताऊंगा, तो मुझे रोड दे के देखो कल ही देखो एक एक को मकान और रोटी और जो और वो मैं दूंगा तुम्हें, रोड दुखी देने बाद ठीका लगा दूसरा जो हमसे मांगा वो भर जाए, इतने बड़े सवाल का बिना मौजूद जवाब, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सब साहब किरदार। उसने कहा कि भाई मुझे इसका हल नहीं मालूम, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ तुम साथ छोड़ दो छोड़ दो, मैं तुम्हें फरोज में क्यों रखू, ना कि उसके बाद उन्होंने मुल्क के बारे में उन्होंने कहा था कि उसको नीचे का दर्जा दिया उसको ले आओ करे दस, इसका हल नहीं साहब दे सकते। वेजेस जो है ना मजदूरी मुकर्र करना, इससे तबकाती कश्मकश का हल हो नहीं सकता, चंद मिनटों में बात दोहराने की जरूरी है। मजदूर इसके दिन भर की उजरत मसलन दस रुपए, राज की उजरत 20 रुपए, ओवरसीयर की 50 रुपए, इंजीनियर की 100 रुपए, साहब कितने आज के बीच जहां तक मेहनत का ताल्लुक है सबसे नीचे वाले मजदूर के सबसे ज्यादा करते हैं। फिर अगर 10 रुपए में इस मजदूर के दाल बच्चों का पेट ना भरे और जिसको 100 रुपया रोज दे रहे हैं वो 10 रुपया नहीं अपना गुजारा करके 90 रुपया उसके पास बातें खतरस नहीं, तो ये मियार क्या है तुम्हारे यहाँ? आप हैरान होंगे कि सारे सोशलिस्ट मुल्कों में भी इसी तरह वेजिस मज है जिस तरह से कैपिटलिस्ट मुल्कों के अंदर, और जब भी ये वेजिस हुई तकलीफ के कायम रहे, मजदूर मजदूर रहा, मेड रहा, वो तो 8 आने ज्यादा दिया जाता था ना, मेरे बड़ा कारीगर से मजदूरों में से ही एक को 8 आने ज्यादा दे देता था, इसका नाम मेड रख देता था, तो 100 रुपए इन्होंने उठेगा कुछ नहीं करने का पा रहे, तो इन्होंने हाथ में हो जाएगा फिर मजदूरों ने मेड की कहीं ज्यादा नहीं थी, जरा वेजिस में आप फर्क डाल दीजिए तब काफी कश्मों कश्म कहाँ से दिया काल मार्च में। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ असूल है बराबर आने मान कि हर एक को उसकी इस्तेदाद के मुताबिक काम, उसकी जरूरत के मुताबिक ही करेगी, जब हजूर ने एक ही काम सिपाहियों का काम जहाज होता था, जहाज में जाने वाले सारे लक्षण तौर पर सिपाही आते थे, पहले मालूम नहीं जो था और मियार था। हजूर ने जब मुजर्रम जो था सिपाही जो की शादी नहीं हुई हुई थी उसको कम दिया और बाल बच्चे वाले को उसके मुकाबले में ज्यादा दिया तो सवाल पैदा हुआ कि ये किस मियार के मुताबिक तकसीम है। वो तकसीम है मोहम्मद ही है अजीजा ने मान, ये है मुखावा तो मोहम्मदी। हजूर ने फरमाया कि उसकी जरूरत उससे ज्यादा है, काम उनकी इस्तेदाद के मुताबिक हो सकता है कि ये जो बैचलर था मुजर्रम था जिसकी शादी नहीं हुई थी वो मैदान जंग में हो सकता है कि सूबेदार हो सकता है, लेकिन आज की इस तरह जो दूसरा हो सकता है वो सिर्फ सिपाही। आपने फरमाया कि ये उसकी जरूरत जो है उससे ज्यादा है, ये मुआवजा आपने फरमाया कि ये उनके कामों का मुआवजा नहीं है। और ये बात हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाजिया की, आपने भी जब वो वजीफों की लिस्ट में कर की है हजूर को उसके बाद दुनिया से तशरीफ ले गए थे, हजरत सिद्दीक अकबर को बनाने में जब लिस्ट में मुरतब हुई थी विदायत उस वक्त भी ये सवाल उठाया था, कहा यह दिया था कि वो सहाबा जिन्होंने रबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 13 बरस मक्के की जिंदगी में सारी सुरंगात और तकालीफ बर्दाश्त की, मदनी जिंदगी में कम अज कम 82 जंगों के अंदर हिस्सा लिया, उनके मुकाबले में जो लोग जो अब आ रहे हैं इन्होंने बहुत छोटा सा जो भी काम किया है, तो आप जो तकसीमी वजायत में बाद अवकात बराबर हिस्सा दे रहे हैं, बाद अवकात इनको ज्यादा दे रहे हैं, उनको कम दे रहे हैं। तो आपका जो उस्ताद है वही कि इन अजलिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कहा कि इन्होंने जो खिदमत दीन की है उसका मुआवजा तो खुदा के यहाँ से मिलेगा, मैं तो माशी मसले का हल बता रहा हूँ। तीन लोगों की कहा कि इनसे पूछ के देखो कि इन्होंने ज्यादा वजीफा लेने के लिए जहाज में हिस्सा लिया था, अगर ये लिया था तो इनका जहाज नहीं है। इन्होंने अपना फरीजा समझ के इतना खुदाबंदी की तामीर समझ के हिस्सा लिया। मैं इस माशी मसले का हल बता रहा हूँ कि बाल बच्चे वालों की जरूरत मुजर्रम के मुकाबले में ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा दूंगा। हजूर का ये असूल और उसने अमल किया हुआ है, काल मार्ग कहां से आगे सकता था। लेकिन ये जो चीज थी कि ये जो इन्होंने खिदमात पर अंजाम दी है उनका मुआवजा खुदा के हाथ से मिलेगा। मैं माशी मसले का हल बता रहा हूँ, इसको किसी की तरफ से इकरार फिर नहीं हुआ, सब मुतमिन हो गए। काल मार्ग के पास ये बुनियाद नहीं थी तो इसका मुआवजा खुदा के हाथ से मिलेगा, वो खुदा के नहीं मिला। ऐसे ये सही निजाम आलम इकबाल ने कहा था रूस को, क्योंकि दुनिया में एक नया निजाम है उसकी तरह डाल रहा है, जिसका ही पूरा असासे मौसम है उसके लिए मौसम बुनियाद जो है उसकी तलाश कर ली है तुमने। मौसम बुनियाद ये है कि इसका पूरा खुदा के यहाँ से मिलेगा, इस ईमान की बुनियादों को जीना निर्माण ये हल माशी जो है ये तबकाती कश्मकश का हल है। हर एक अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वो काम करे जो उसे तब्दील कर दिया गया। ला असलतुम अलैहिम अजरिन, ये सवाल नहीं कि उसका अजर वो उनसे मांगे, ये नजरिया इल्ला अल्लाह, इसका अजर को मुझे मिल जाएगा वहां से। जब आए तो उसके बाद पूछा जाए कि भाई तुम्हारा तुम्हारे बाल बच्चों का गुजारा कितने में हो जाता, ठीक है जितने में हो जाएगा वो इसलिए दे दो। उन्होंने कहा काम में और इसमें ताल्लुक क्या है। ये है बुनियाद अजीजा ने मान, पूछते हैं कुरान का इस्लाम का माशी निजाम क्या है और उसमें इतनी मोटी किताबें लिखी जाती है, चार फिक्रों में आ जाए तेरा ही जीना चाहे तो बातें हमारी हैं। काला रब्बे इन कौमी तजबून, ये मेरी तकजीब करते हैं, तकजीब इस बात की थी जो आज भी की जा रही है कि मेयार जरूरत नहीं, मेयार वेजिब का तयन करना, और वो कौन करता है, कारखानदार करता है, मालिक करते, वो नहीं करते मजदूर तो नहीं अपनी वेजिब में कदर करता, कारखानदार करता। ये है तकजीब इस असूल की, इस दीन के असूल की, कि जरूरत के मुताबिक खारिज को दिया जाता है। आज जिस कदर तकजीब हो रही है आपके यहाँ दीन की, काम दूसरों के यहाँ होती है, सेकुलर असूल से भी सुविधा जाती ऐसी कि जिनके यहाँ कोई शख्स आपकी भूजा नहीं देता। न कौमी तक जबून में वो है तकदीर नदीना में ना, ये नहीं कि वो पहले किसी को बोल ना, वो कहते थे कि नहीं वो बात झूठी है कि तकलीम और इज्जत का मैार जो है वो ये मैार बालक है, मैार जागीरदारी है, मैार सरमायादारी है, मैार हकूमत ये नहीं चीज पे आते बैनी व बैना हूँ सत हम वह नजी नहीं वम आइया मिनल वो नहीं। हम वहां तक पहुंच गए हैं कि जो उस रास्ते पे आएंगे आएंगे नहीं, मेरे उस निजाम को वहां कायम होने नहीं दें। इसलिए मुझने और जो मेरे साथी हैं इनको एक तरफ पर और ये दूसरी तरफ है, हमने कुछ फैसला सुन बात कर अलग हो जाए ठीक है। आसान जाए ना हो वह मैं मार हूँ बिल्कुल मजबूत। मैंने कहा कि ये बात फिर दूसरी जगह है कि इसके लिए क्या किया गया अभी अलसर था, यहाँ तो यही है ना कि उनको और उनके साथियों के कश्ती में जो गालिया ये बाकी जैसे सैलाब में गर्क हो गए। दुनिया अगर इतना बादल बाकी है ये दो आगे पानी इतना थी गाले का ना आया। इस वाक्य में हकीकत तक पहुंचने की बहुत बड़ी निशानी है। अगर इतनी सी बात ही हो तो उन्होंने कश्ती नहीं बनाई कि डूब गए तो कौन सी बहुत बड़ी निशानी है। बात तो वो है जो पहले कही गई है कि तदकाती कश्मकश जो है उसको मिटाने की जरूरत है, और तदकाती कश्मकश का मदनी निजाम जो है वो अपने दोष से आग डूब के मर जाता है। वह मारता ना अक्सर होगा में नहीं तो जो है उस बात को बहुत लोग मानते ही नहीं। इन्ना रब्बा का दाहवल अजीब रहीम माने या ना माने, हमारे सूरज की ये कैफियत नहीं है कि लोग अगर माने तो वो चलेगा साथ छह बात के 57 मिनट पर 57 मिनट पर तो वो चले, और अगर ये कहे नहीं इससे नहीं लड़ेगा तो जरूर ना करे। हम अजीब हैं तुम वो का हम इतरा हमारे हाथ के अंदर चढ़ेगा वो सूरज चढ़ के रहेगा। इकतदार जो है हमारे यहाँ खिलाफी खान का और डिक्टेटर का इकतदार नहीं है। हर रहीम इंसानियत के लिए बायस रहमत होता है हमारा। मर्दे तो अहले नहारा जिंदगी उस कभी डिक्टेटर से कहता है कि तेरी मौत में अहले इंसान के लिए जिंदगी बास का बीनी के अनजाने के 30 चंद दिन के लिए सांस ले और फिर अपनी आंखों से देख कर अंजाम क्या होता है। मर्दे तो अहले नहारा जिंदगी अजीज और रहीम अजीब चीज के बाद अंदाज में क्या जाता है। मर गया तो अहले नहारा जिंदगी इन्ना रब्बा का लहवल अजीब रहीम। जहां ये दास्तान खत्म हुई दो बातें इसमें बात कहने की, बात तो उन्होंने यही कही थी ना कि वो तनखाती कसमत है या मैार इज्जत तकरीम का जो है वो दौलत है, जिम्मेदारी है, सरमायादारी है, ये जो ये काम करने वाले लोग हैं ये जरीन है ये सब कुछ, और तो कोई इनके खिलाफ गुरु पुराने नहीं बताया। लेकिन कहा यह है कि इन्नहुम कानू हुम अज़लमा व अतगा सिक्सटी ओवर 52। ये कौन अज़लम यानी बदतरीन किस्म की जानी अतगा इंतहा दर्जे की सरकश, जो कौन मेरे कौमियत खून का रिश्ता वतन का रिश्ता जुबान का रिश्ता ये बना, और जो काम तबकाती कसमकश कायम रखे मेयार इज्जत और तजीबत दौलत हसमत जागीरदारी या ये इजाद और भूत का जो फर्क है इसको रखे। कुरान उनको अजलम कहता है अतगा कहता है, इसके खिलाफ थी ये दावत देती है कराम रास्ता। ये अपने लोगों को क्या कहते अब जेल में था ना, तो बात ये ऐसी कह रहा है कि अगर सीरियसली लोगों ने सुन ली तो वो वाकई इसके साथ हो जाएंगे। जवाब इनके पास माकूल था नहीं, रीजन से मर्जी जवाब था नहीं, क्या बात आज भी वही कही जा रही है। जीना ने मन कहा इन्होंने इन होगा इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन 23:25 लोगों से कहा वो पागल हो गया है, पागल हो गया। आज भी अजीजा ने मन जो ये कहता है उसके मतलब यही कहते हैं कि ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया, ये ठीक है। फरलाने तो यही होते हैं इसलिए कि वो अपने मतलब की तस्वीरों के अंदर पूछो नहीं, इतने बड़े फरलाने होते हैं
اور جو یہ بات کہنے والا ہوتا ہے اس کو ایک لفظ کا تم اس میں سے مجبور قلم قرار دو دو تم پاگل ہے سنو پاگل آ جا پاگل ہوئے پاگل ہوئے پاگل ہوئے تو کتنے سے منڈے گلی میلے کے لگا دیں یہ گلی میلے کے لگا دے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا آپ پتہ لگ جاتے ہیں آپ پاگل محفوظ بات کا محفوظ جواب نہیں پاگل لیکن آپ نے قرآن بتاتا ہے بھاؤ والے جنہیں تو ان کو پتا نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے انجام کار بتائے گا کہ تم دونوں میں سے پاگل کون تھا وقت صرف تھوڑے کم منٹ رہ گئے بات بڑی اہم ہے جی ہاں ہو گئی بات بڑی اہم ہے کشتی بنائی تھی کشتی میں بیٹھے تھے اور اس طرح سے ان کی نگاہ دی وہ ڈوب گئے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا جڑنے سے کم تھا ہمارے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ یہ اس قسم کے جرائم جو کرتے تھے ان کے نتیجے میں خدا کی طرف سے عذاب آتا تھا اور وہ عذاب میں گرفتا ہوتے تھے تمام قومیں جو اس طرح سے قرآن میں آئی ہیں ان کے مطابق ذہن دل کہ وہ تو جرائم کرتے تھے جہاں وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا قاعدے قانون قواعد کلو کے معذور کی روح سے نہیں کچھ ہوتا تھا خدا کی طرف سے ایک عذاب آ گیا سیلاب آ گیا یہ غرق ہو گئے وہ پتھر برس گئے وہ غرق ہو گئے آتے سے پہاڑ سے لاوا نکلا وہ غرق ہو گئے وہ ارم والوں کا یمن والوں کے بند ٹوٹ گئے خدا کی طرف سے عذاب آتا تھا اور یہ موجودہ ہوتا تھا اس نبی کا اب نہ نبی آئے نہ موجودہ ہو تو جب وہ موجودہ نہیں ہونا تو خدا کا عذاب بھی نہیں ہوگا ماحول یہ کیا تھا یہ انجام جو ہوتا تھا ان کاموں کا اور ان کے جو غلط نظام ہوتا تھا جو اعمال ہوتے تھے ان میں باہمی تعلق کیا ہوتا تھا یہ بڑا اہم سوال ہے جیوان من اسے محض موجودہ کیا کہ آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کیا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا موجودہ دکھانے والے بھی چلے گا جن کے ساتھ موجودہ ہوا وہ بھی چلے گا اب نبوت ختم ہو گئی نبی آنے سے رہ گئے تو اب رعایت ملتا ہے تو ان میں باہمی تعلق کیا تھا یہ اہم مسئلہ ہے اس کے متعلق وقت چاہیے اور ہم اسے آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں آج کا درس اگلا درس شروع ہوگا 26/123 سے 122 پہ ختم ہوا ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم